हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 25 नवंबर को गुरु महाराज को मिलने गया था, तो मुझे एकादशी का दिन था और यहाँ से मुंबई में गया था 24 तारीख को। 24 को मेरा काम करके 25 को मैं गुरु जी को मिलने गया था। तो सबसे पहले मुझे गुरु जी ने जब मिले माई गुरु जी को, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता तो मुझे पहले ही फर्स्ट थिंग पूछते नहीं ना। उन्होंने कहा, मुझे पूछा कि प्रश्न सुनिए, उन्होंने बताया मुझे, पूछा कि आपके अस्पतालों में भक्त लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है, हाउ आर द डिवोटीज रिलेटिंग विथ इच अदर इन द हॉस्पिटल्स। बहुत गहरा और बहुत महान प्रश्न है ये, क्योंकि प्रोजेक्ट तो जैसा ही हम चलाते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं तो वो अपनी गति से आगे बढ़ता है, वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा काम बढ़ता है, लोग बिजी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी इन्होंने बच्चों को जन्म दिया है ना, और ठीक से संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, बच्चे बड़े होते रहेंगे ना कि अपने आप, है कि नहीं, थोड़ा कमज़ोर होंगे या अच्छा नहीं खाना खिलाएंगे, तो अच्छा खिलाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन बढ़ना बंद नहीं हो जाएगा उनका, है ना। जैसे जन्म दिया आपने तो बढ़ते जाएंगे वो, हम भी जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारी उम्र आगे बढ़ती जाएगी। प्रकृति का नियम है ना वो, जैसे आप कुछ किस चीज़ को जन्म देते हो तो वो चीज़ आगे बढ़ जाती है अपने आप, प्रकृति उसको बढ़ा देती है। उस तरह से आपने हॉस्पिटल खोला, भक्तिविदान तो हॉस्पिस खोला, नेत्र चिकित्सालय खोला, तो वो अपने गति से चलता रहेगा, वो जैसे भी थोड़ा सा लड़खड़ के या दौड़ेगा या लड़खड़ेगा जैसे भी हो, लेकिन उसके अगर सही रूप में अगर उसकी उन्नति करनी है आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक उद्देश्य को समझते हुए, जिस उद्देश्य से बनाया गया उसको समझते हुए, अगर उसको उस प्रकार से उन्नति करनी है तो वो किस तरह से होगा। हमको लगेगा कि धन आएगा तो फिर होगा, धन आएगा तो फिर अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब लोग भी आएंगे और पगार भी लेंगे और काम भी बढ़ेगा, ये साधन बढ़ेंगे समझो, बहुत सारे लोग आएंगे उसके अंदर, या और कोई कोई कुशल व्यक्ति आएगा उसके अंदर, कोई स्किलफुल आदमी आएगा, एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। लेकिन ये सब भी सत्य है, सत्य नहीं है, लेकिन वो तब उसकी सही वृद्धि होगी जब उसमें काम करने वाले लोगों का संबंध जो है वो आदरपूर्वक होगा और वैष्णव के स्तर पर होगा। जब वो आदरपूर्वक वैष्णव स्तर पर होगा तो उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो न केवल प्रोफेशनल प्रगति करेंगे, बड़ा आध्यात्मिक प्रगति भी करेंगे। तब जाकर हम जैसी संस्थाओं का वास्तविक विकास होगा, नहीं तो फिर विकास होगा भौतिक दृष्टि से होगा, वास्तविक विकास नहीं होगा। तो एक बार मैं उधर हमारे बरसाने की जमीन पर गया था, जाता हूँ बीच में, जाते रहता हूँ मैं, तो जब मैं पिक यात्रा लेकर गया था 2 साल पहले, वहाँ पर अपने कैंप की यात्रा लेकर गया था, तो उधर बैठ के हमने थोड़ा समझाया कि ये जमीन कैसी है, क्या करना है उसको जमीन में, हमको हमारा प्लान क्या है वगैरह बताया। लेकिन एक हमारा वहाँ डिस्कशन हुआ ये बात का कि आज बरसाना आई कैंप जिस जगह पर जिस तरह से चल रहा है, जो भाव है, लोग 500-600 लोग अप्लीकेशन देते हैं और हमको केवल 200 लोगों की जरूरत होती है, अधिक लोगों को ना बोलना पड़ता है, कम लोगों को हाँ बोलना पड़ता है, इतना लोगों का उधर इंटरेस्ट है आने में, और लोग अपना खर्चे से टिकट निकाल के आते हैं, अपने छुट्टी निकाल कर आते हैं, छुट्टी यहाँ पर स्पेंड करते हैं, छुट्टी तो लेकर कहीं भी जा सकते हैं वो परिवार के साथ, लेकिन वो सब छोड़ के इधर सेवा करने आते हैं, और यहाँ पर भी आते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई मन मर्जी सेवा कर लिया, ऐसा नहीं, 12 घंटे सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, ठंड में वो भी कभी गर्म पानी मिलेगा, कभी चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा, ठंडा गुनगुना पानी मिलेगा, उसमें भी 5 बजे ड्यूटी पर आ जाएंगे, 5 बजे मॉर्निंग में, यहाँ धुंध रहती है, धुंध वहाँ पर भी 5 बजे, 5 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं। तो ये जो भाव है ना, सेवा भाव, ये वो बरसाने का हृदय है, हार्ट है, और वही राधा रानी को प्रसन्न करता है। तुम लोग ये बात कर रहे थे वहां पर कि आज जो सेवा भाव है, जिससे लोग इतने दूर दूर से बड़े बड़े पढ़े लिखे हाँ, और कुछ कुछ MBA हैं, कुछ इंजीनियर हैं, लेकिन वहाँ झाड़ू लगाते हैं, पेपर में नाम लिखते हैं, जो उनका उनका पेशा नहीं है करने का। बड़े बड़े लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, वो अपना जो पेशा है उसको छोड़कर एकदम सामान्य काम करते हैं, और आपको पता भी चलेगा नहीं कि ये कोई PhD है या कोई MBA है, कोई इंजीनियर है या कोई बड़ा आदमी परदेश से आया है। एकदम सिंपल काम करेंगे, जो बताया वो काम, खाना परोसेंगे, सब्जी काटेंगे, कुछ भी करेंगे, एनीथिंग। तो वो जो भाव है ना, वो भाव इस पूरे प्रोजेक्ट का हार्ट है। तो हम वहां बैठकर ये चर्चा कर रहे थे, जमीन पर बैठकर, कि आज ये जमीन है हमारी, कल यहाँ पर अस्पताल खड़ा हो जाएगा, है ना, फिर हम एक दिन बुढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे, फिर दूसरी पीढ़ी आएगी, उसको ले लेगी अपने हाथ में, चलाएगी उसको, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी, और 100 साल के बाद में 3 पीढ़ियां जिन्होंने सेवा किया, किस कोई नहीं रहेगा उसके अंदर, वो चौथे पीढ़ी के लोग रहेंगे, वही जवान लोग चलाते रहेंगे उसको। तो हमारा ये उसमें डिस्कशन हुआ था कि चौथी पीढ़ी भी जब आएगी तो यही भाव बने रहना चाहिए, तभी फिर वो यशस्वी हो गया। जब तक चौथी पीढ़ी आएगी तो पता नहीं कितना बड़ा अस्पताल हो जाएगा, पता नहीं वहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन होने लगेंगे, हड्डी के, लेडीज ऑपरेशन, डिलीवरी के हो जाएंगे, बच्चों के हो जाएंगे, क्या क्या, आई डोंट नो भविष्य में क्या होगा। लेकिन वो यश का मापदंड नहीं है कि हाँ अभी तो आंखों का था पहले, अभी देखो कितना बड़ा हो गया, अभी एशिया का बड़ा हॉस्पिटल हो गया, वो उसके यश का मापदंड नहीं है। यश का मापदंड ये है कि जिस भाव से वो शुरू किया था वो भाव अभी भी वैसे ही है, और अगर उस भाव को हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैसे कैरी करेंगे, हम पेपर पे लिखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे कि यहाँ भाव बहुत ज़रूरी है, भाव के बिना आगे नहीं कुछ चलेगा, और सब लोग आगे पेपर पढ़ेंगे, उसको रोज नोटिस पढ़ेंगे और चले जाएंगे अपना भाव बनाने के लिए, नहीं बनेगा ना भाव। ऐसे भाव कैसे बनेगा, भाव एक भक्त से दूसरे भक्त को मिलता है, आपको मंजूर है ये बात, मानते हैं इस बात को आप? आज आप में अंदर जो भी भाव है वो कहाँ से मिला है आपको, किसी ने आपको दिया है अपने उदाहरण से, अपने व्यवहार से, है ना, आपको इम्प्रेस किया होगा उसने, प्रभावित किया होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ मुझे भाई इसके जैसा बनना है, और किसी को देखकर आप लोग यहाँ पर आए होंगे शायद, अरे ये प्रभु जी है ना, ये माता जी है ना, ये मैं ऐसे बनना चाहता हूँ और मैं आकर वहाँ पर सेवा करूँगा। जैसे हमारे मंगल प्रभु भी वहाँ पर बॉम्बे में थे, जब डॉक्टर वागले और उनकी पत्नी आने का तय हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं भी आता हूँ, मुझे भी आना है। तो किसी ने आपको वो भाव दिया ना, हृदय का भाव जो है वो दे दिया आपको, और वो आपने ले लिया, और वो आप यहाँ पर आके उसको बढ़ा रहे हैं। तो भाव अगर आपको कैरी फॉरवर्ड आगे आगे लेके जाना है तो भक्तों की आवश्यकता है, और केवल भक्तों की आवश्यकता है, भक्त तो दुनिया में बहुत सारे हैं, उनके साथ संबंध की आवश्यकता है। वृंदावन में कितने भक्त हैं सबको जानते हैं क्या आप लोग? नहीं, कुछ लोगों को जानते हैं आप, जिनके साथ रहते हो, उठते हो, काम करते हो, कुछ आपका रिलेशनशिप है। तो उसका जो हार्ट है, उसके उस भाव का भी जो हार्ट है वो रिश्तेदारी में है, रिश्ते, भक्तों के भी जो रिश्ते हैं उसमें है। 96 में परम पूज्य राधानाथ महाराज जी हमको मिले थे, और उन्होंने तब हॉस्पिटल बनाने का प्लान किया था कि हमारा हॉस्पिटल भक्ति वेदांत जो है बनेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन में था तभी, कुछ छोटा सा दवाखाना था वो चलाते थे हम लोग, उसको बड़ा अस्पताल बनने जा रहा था, जैसे यहाँ पर भी एक छोटा सा रेंटल जगह था और ये बनने जा रहा था, फिर वो वहाँ से शिफ्ट हो गया, वैसे हमारा भी वैसे छोटा अस्पताल था और वो बड़ा बनने वाला था। तो तभी वो आए थे और उन्होंने कहा था कि आप जो अस्पताल बनाएंगे उसका यश जो है वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उसके आगे और कितनी बढ़ेगी और कितने मरीज आएंगे, कितना बिजनेस होगा, कितने करोड़ों का आपका टर्नओवर होगा और कैसा कैसे आप करेंगे, इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं होगा। वो ये अस्पताल का यश आप जो 4-5 लोग मिलकर शुरू कर रहे हैं उनके संबंध में छुपा हुआ है, और आप लोगों का संबंध अच्छा रहेगा तो ये अस्पताल आगे बढ़ेगा। फिर उन्होंने बन महाराज का जो संस्थान है यहाँ पर वृंदावन में, आप जब तो आप तो वृंदावन में रहते ना, वो मंदिर है ना अपना इस्कॉन का, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना आप लई बाजार के और उस तरफ जाएंगे तो तुरंत राइट हैंड में एक बड़ा संस्था आएगा, वाइट रंग का, बड़े बड़े खंबे और बहुत विशाल हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल नहीं संस्था है, इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके अंदर, BSc कॉलेज है, सब कुछ है उधर, विद्यापीठ है मतलब वो। तो बन महाराज ने उसको आध्यात्मिक नींव पर बनाया था और वो चाहते थे कि यहाँ पर, वो क्या नाम था उसका, बन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल साइंस, मतलब हमारे देश जो है ना पौरा ईस्टर्न कंट्रीज का जो साइंस है, सिद्धांत है, उस पर आधारित बनाया था उसको। उनकी इच्छा थी कि ये कॉलेज के माध्यम से हम लोगों को ये वेदांत वैदिक शास्त्र जो है लोगों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा उनका मूड था। लेकिन उनके साथ में ज़्यादा भक्त लोग नहीं थे तो धीरे धीरे उनको फिर ये प्रोफेसर बाहर से, फिर वो प्रोफेसर बाहर से, फिर वो साइंटिस्ट बाहर से, ऐसे करके करके उनका टीम बढ़ाना पड़ा। जैसे भक्ति विद्यालय में सब लोग भक्त नहीं है, कुछ नर्सेस हैं बाहर की जो डिवोटीज नहीं है, लेना पड़ा। अस्पताल है, नर्सेस चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, कैसे मिलेंगे? तो धीरे 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 क्या हो गया, भक्तों की संख्या कम हो गई और बाहर वालों की बढ़ गई। फिर बाहर वालों को अधिकार प्राप्त हो गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया, तो वो आध्यात्मिकता बाजू में रह गई पूरी और उनका जो भौतिकवाद है वो चालू हो गया, पैसा, बिजनेस, अकाउंट्स, ये वो सब। एक दिन वातावरण इतना बिगड़ा कि बन महाराज रिजाइन करके चले गए। अभी खाली संस्था के बोर्ड पे उनका नाम है और बाकी कुछ नामो निशान संस्था में नहीं है, एक आम संस्था बन गई हो, पैसे का धंधा वाली, पॉलिटिकल मतलब जो भी गवर्नमेंट का होता है वैसे बन गई है वो। तो बन महाराज ने क्या सोच के उसको बनाया था, आज एक सबसे बड़ी नामचीन संस्था है वो, एडमिशन मिलता नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी गुरुजी ने क्या बताया, नाम तो प्राप्त हो गया उसको भौतिक दुनिया में, लेकिन जिस उद्देश्य से बन महाराज ने उसको बनाया था वो कहीं नहीं रहा अभी। वो कोई स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर कुछ नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है, कोई आध्यात्मिक वातावरण नहीं है, कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल केयर जो होता है वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एक संस्था है जहाँ पर लोग एडमिशन लेते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, चले जाते हैं। तो उसका उदाहरण हमको उन्होंने 96 में दिया। और आप ही भी ऐसे ही कमर्शियल संस्था शुरू कर रहे हो, है ना, मंदिर तो नहीं खोल रहे हो, एक हॉस्पिटल खोल रहे हो, तो आगे जाके बिजनेस होगा, पैसा आएगा, मैनेजमेंट की वृद्धि होगी, स्टाफ लोग बढ़ेंगे, बड़े बड़े काम हो जाएंगे। अभी छोटा काम होगा तो आप में हार्ट के ऑपरेशन होंगे, ब्रेन के ऑपरेशन होंगे, तब आप लोग फिर ज़्यादा फंस जाओगे उसके अंदर गिनती करने में और बिजनेस और उसका लाभ लाभ हानि कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो उद्देश्य आपने मन में रखकर खोला था वो आपको भूलना नहीं है, और वो आपको भूलना नहीं है, बरकरार रखना है उसको, बनाए रखना है। तो आपको एक दूसरे का जो संबंध है उसको बनाए रखना और बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझना कि आप व्यस्त हो जाओगे फिर कब मिलोगे एक दूसरे को। मैं और माधवान बाबू एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं लेकिन बहुत अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है, क्योंकि तो मैं भी व्यस्त हूँ, वो भी व्यस्त हैं। लेकिन अगर प्रेम का रिश्ता नहीं है तो फिर वो ऑफिशियल हो जाएगा पूरा। तो उन्होंने क्या आदेश दिया था, ये बहुत इतिहास समझना ज़रूरी है। उन्होंने आदेश दिया था कि आप चाहे जितना बड़ा काम करो, हॉस्पिटल को बढ़ाओ, करते रहो, लेकिन आप लोगों को 15 दिन में एक बार घरों में, मतलब आपके घर में, इसके घर में, इसके घर में मिलना होगा। और वो मीटिंग के अंदर आपके परिवार भी आएगा, पत्नी भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। उस समय हम लोग 5-6 लोग थे, तो 5-6 लोग के परिवार भी आएंगे। और आप लोग, एक ऑर्डर दिया उन्होंने कि आप लोग उस मीटिंग के अंदर कोई भी बिजनेस की बात नहीं करेंगे कि लास्ट महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो गया, कितने एम्प्लॉयज आए, कितने गए, कितने अच्छे थे, कितने छोड़ के गए, या कितने ऑपरेशन हो गए, या कि वो केस कितना कॉम्प्लिकेटेड था, वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो कोई मेडिकल बातें नहीं करेंगे और कोई बिजनेस की मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। जो अपने को एक तुरंत मिलते ही, अरे पता है क्या वो केस केस क्या हुआ, वो केस उस दिन मर गया था, वो क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया, तुरंत मिलते चालू करते हम लोग बात ना। ये हमारा मतलब क्या करें, अभी नेचर है ना। आप कुछ अब नर्सिंग की बात करेंगे, कुछ आप डॉक्टरी की बात करेंगे, कुछ मैनेजमेंट की बात करेंगे, दिस इज नेचुरल जब मिलेंगे। लेकिन उस मीटिंग में सोच समझ कर निश्चय पूर्वक आपको मैनेजमेंट की बात नहीं करनी है, पैसे की बात नहीं करनी है और मेडिकल बात भी नहीं करनी है, केवल कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भजन, कृष्ण प्रसाद और प्रेम का आदान प्रदान, पारिवारिक, जो आपका कैसे हो, बेटा कैसे है, कितना पढ़ रहा है, कैसे है, तबीयत कैसी है उसकी, पत्नी कैसी है, पति कैसे हैं, माँ कैसी है, ठीक है, ऐसे ही आपको मीटिंग करना है। 2 घंटे का टाइम दिया, 2-3 घंटे का, अच्छा प्रसाद बनाओ और टर्न बाय टर्न, कभी उनके घर पे टर्न बाय टर्न बनाओ उसको और जारी रखो, ऐसा उन्हें आदेश दिया था। वो आदेश आज भी पालन हो रहा है, मैं 20 साल के ऊपर हो गए उसको। और उन्होंने कहा कि आपके हॉस्पिटल का यश आप लोगों के संबंध पर निर्भर रहेगा, कैसा संबंध है आपका। और आपके संबंधों में बिजनेस आ गया, पैसा आ गया, ईर्ष्या आ गई कि अरे साथ में ज्वाइन किया था लेकिन ये तो ज़्यादा कमाते हैं मेरे से, मैं कम कमाता हूँ, अरे मैं तो साथ में आया था लेकिन ये तो बड़े अधिकारी बन गए, मैं तो ऐसे ही रह गया। और वो देखो उसके घर में कितने फैसिलिटी है, मैं तो कितना मेहनत करता हूँ लेकिन मैं ऐसा ही रह गया। ये भाव आ सकता है मन में, बिजनेस किसी का बढ़ सकता है, किसी का पद बढ़ सकता है, किसी की ईर्ष्या हो सकती है, तुलना हो सकती है, इससे बचना है आपको। तो आपको प्रेम का संबंध बनाए रखना पड़ेगा। और प्रेम का संबंध बनाए रखने के लिए कहते हैं ना इंग्लिश में आउट ऑफ द वे, मतलब आपके दायरे से बाहर जाना पड़ेगा आपको। जैसे कि अभी अगर मुझे आपको मिलना है तो आमतौर पर तो नहीं मिल सकते हम लोग, आप सुबह जाते हो वहाँ पर, वहाँ बिजी रहते हो, मैं यहाँ पर बिजी रहता हूँ, और संडे को आप कुछ अपना कपड़ा धोना होगा, आपको कुछ जाना होगा, मार्केटिंग करना होगा, और मुझे भी कुछ संडे को सोना होगा शायद, लेकिन आपको मुझे मिलना होगा तो मुझे उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अजीत कृष्ण बाबू मुझे मिलना है आपको, हाँ कब मिल सकते हैं, तो बोलेंगे मैं 8 बजे आता हूँ तो तभी आधा घंटा मिल सकता हूँ, या तो संडे को आप सुबह मुझे मिल सकते हो, वो गुरु पूजा के बाद हम आधा घंटा मिलेंगे। तो आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए, आपको मिलना होगा। तो आमतौर पर आप मिल नहीं पाएंगे क्योंकि आप रहते भी बाहर हो, ऐसा भी नहीं बिल्डिंग में रहते हो। तो ये जो मीटिंग हमारी भी है वो उसी भावना के आधार पर, उसी आदेश के आधार पर यहाँ पर भी की गई है, क्योंकि हमारा जो भक्ति विद्वान तो हॉस्पिस है वो कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है। भक्ति विद्वान हॉस्पिस, भक्ति विद्वान आय हॉस्पिटल बरसाना, कुसुम सरोवर, राधा बन बिहारी मंदिर, ये सब एक परिवार है, एक परिवार ही उसको चलाता है। अलग अलग लोग अलग काम कर सकते हैं, वहाँ पर आँखों का करते हैं, यहाँ पर डेथ लोगों का करते हैं, वहाँ पर मंदिर की पूजा करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन तीनों हमारे एक ही परिवार के हिस्से हैं। और प्रभुपाद का परिवार कितना बड़ा है बताओ 652 सेंटर है उनके, 652, हर जगह अलग भाषा बोलते हैं, अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अलग प्रकार करेंसी में काम करते हैं। हाँ मूल्यवाद प्रभु, कौन सी करेंसी हमारे यहाँ पर, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये का नोट भी आएगा शायद, मालूम नहीं। तो वैसे वहाँ पर डॉलर है, येन है, किसी के पास फ्रैंक है, किसी के पास पाउंड है, किसी के पास अलग अलग है, क्या क्या है पता नहीं, लेकिन फिर भी सारा परिवार जुड़ा कैसे है बताओ। एक महामंत्र जप करते हैं, 4 नियम है, एक सेम पालन करते हैं, सेम भगवान को पूछते हैं, सेम भगवत गीता पढ़ते हैं, अलग भाषा में पढ़ते लेकिन पढ़ते वही है, और सेम शेड्यूल फॉलो करते हैं, मंगल आरती का और दर्शन आरती का, भगवत गीता, भागवतम, उत्सव, फेस्टिवल, जन्माष्टमी का सेम पैटर्न है। और सब जगह जाएंगे आप, कहीं भी जाओ, रशिया जाओ, अमेरिका जाओ, बेल्जियम जाओ, खिचड़ी मिलेगी आपको निश्चित रूप से, स्टैंडर्ड खिचड़ी, इस्कॉन खिचड़ी और गुलाब जामुन, वो सब जगह स्टैंडर्ड है, किधर भी जाओ प्रभुपाद ने सेट कर दिया वो। हाँ हलवा, एक हलवा प्रभुपाद ने फेमस किया उसको, सब जानते लोग, दुनिया के कोने का आदमी जो है वो पता नहीं कौन से कोने में रहता है, वो मंगोलिया, मंगोलिया के अंदर भी हलवा बनता है, इस्कॉन में खिचड़ी भी बनती है। तो हमारे अंतर, हमारा जो है ना समान धागा है वो हमारे बीच में, चाहे हम कितने भी अलग अलग लोग से कहाँ से आए होंगे, लेकिन हमारा एक समान धागा है जो हमको जोड़ता है ना। वे माला मुझे पहनाई है ना, कितने रंग के फूल है इसके अंदर, लेकिन वो एक जगह टिके हुए हैं, गिर नहीं रहने चाहिए, पंखुड़ी बाद में गिर जाएगा, लेकिन फूल तो नहीं गिर रहे ना वो, क्योंकि एक बीच में एक धागा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो सबको बांधे रखा हुआ है। तो मैं तोड़ूंगा तो टूट जाएगा वो, लेकिन मैं रखूंगा ऐसे तो वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। और इसमें शायद 5-6 रंग के फूल आ सकते हैं, गुलाब आ सकता है, चंपा आ सकता है, अलग अलग मोगरा आ सकता है, चमेली आ सकती है, लेकिन सब एक ही जगह रहे, गले में रहेंगे मेरे। देखो प्रभुपाद जी के गले में देखो ये सुंदर मालाएं हैं, वो धागे से बंधी हुई है। देखो कदम के फूल की माला नरसिंह भगवान पे, देखो धागे से बंधी हुई है। वो धागा जो है ना वो हमारे लिए भक्तों का रिश्ता है। हम लोग कभी भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं अगर हमारे भक्तों का रिश्ता अच्छा नहीं है। और सबसे तकलीफ क्या है भक्तों के रिश्ते में, हमारा और तुम्हारा, तेरा और मेरा, ये जब होता है तो हमेशा हम अलग हो जाते हैं। अरे आप तो सांवले रंग के हो, मैं तो गोरे रंग का हूँ। अरे आप तो बिहार के हो, मैं तो यूपी का हूँ। अरे मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मैं चावल खाता हूँ, तुम रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, पनीर खाते हो। अंतर तो बहुत है हमारे। आप उड़िया हो, कुछ अलग ही बोलते हो भाषा, हम अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन समानता क्या है? आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, मैं भी हरे कृष्ण मंत्र बोलता हूँ। हमारे गुरु जी सेम है, या तो हमारे प्रभुपाद जी सेम हैं, सब हमारी किताबें सेम हैं, पालन भी सेम करते हैं। और जैसे ही हम मिलते हैं किसी को ऐसे, तो एकदम हमको लगता है होमली, एकदम लगता है कि अरे आपके परिवार के लोग आ गए। बंद करना प्रभु जी। सऊदी अरब में भी गए आप और अचानक आपको कोई मिल गया हरे कृष्णा, तो कितने खुश हो जाएंगे। अरे इतने रेगिस्तान के अंदर कोई मिला भाई, अपने अपना आदमी मिला। अब तुरंत अपने आप को लगेगा अपना, आप तुरंत फोन लेंगे, कहाँ रहते हो आप, कौन सी सिटी में रहते हो, कहाँ काम करते हो, कब फ्री रहते हो, कब मिलेंगे। एकदम मराठी में कहते हैं आपुल की, मतलब अपनापन होता है, महसूस होता है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी दिन से बंद हो गया था, लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए। बंद होने से अलगता बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, अलगाव बढ़ेगा, और अलगाव बढ़ने से कभी इसको लाभ नहीं होता है। माता पिता भी बच्चे से शादी होकर अलग हो गए तो भी रिश्ते बहुत दूर हो चले जाते हैं। हाँ कभी कभी मिलते हैं, वो क्या अपने अपने करते रहते हैं, है ना प्रभु जी? आपका भी अभी बच्चे बड़े हो गए, कोई शादी है कोई नहीं है, अलग रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं, अलग हो जाते हैं ना। रोज का आना जाना, मिलना, फोन करना रहेगा तो उसका रिश्ता बना रहता है। हमारे घर में तो 5 भाई 2 बहनें और बड़ा बड़ा परिवार है। एक खड़ा करेंगे ना यहाँ पर तो एक प्रोग्राम उनका हो जाएगा 50 लोग का, आपकी जरूरत नहीं। फिर एक मेरा परिवार आएगा ना पूरा, सब लोग, तो 50 पीपल विल बी हियर। बट दुर्भाग्य से सब अपनी अपनी दिशा में आए हैं, अपनी अपनी जगह पर है। कोई अमेरिका है, कोई इंग्लैंड है, कोई अहमदाबाद में है। कभी भी फोन नहीं करते हैं, कभी पूछते नहीं मम्मी कैसी हो, कभी कुछ कनेक्शन नहीं है। देखभाल तो दूर की बात है, पूछते भी नहीं है हाउ आर यू। अभी हो गया व्हाट्सएप ना, ये तो आसान हो गया, सब उसमें करने का, झगड़ा भी उसमें करने का, विशिंग भी उसमें करने का, हैप्पी बर्थडे भी उसमें ही, हैप्पी एनिवर्सरी भी उसमें, हैप्पी दिवाली भी उसके अंदर ही। तकलीफ नहीं बात करने की, फोन करने की, कोई कष्ट करने की तकलीफ नहीं, क्योंकि चाहते नहीं ना। अगर चाहते तो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, फोन करते, बात करते फोन पे, कैसे हो माँ, बेटा कैसे हो आप, है ना। तो फिर इतना बड़ा परिवार होकर लाभ क्या है उसका? नाम के लिए है, हमारे लिस्ट में 50 लोग हैं, बस इतना ही है, इतना गर्व है। अब बोले वाह क्या बड़ा परिवार है आपका, लेकिन उसका लाभ शून्य है। क्यों शून्य है? सब लोग अपने आप मस्त है, कोई ऐसा पापी नहीं, कोई शराबी, कोई नशा करने वाला कोई नहीं उसके अंदर, लेकिन लाभ शून्य क्यों है? क्योंकि रिश्ता ही नहीं है, नो रिलेशनशिप, तो लाभ शून्य है उसका। रिश्ता होगा तो लाभ ही लाभ है उसका। और वो तो एक परिवार है, हमारा जो काम है वो भक्तों का काम है, परिवार से भी बढ़कर है, क्योंकि हमको पता है कि जब मरेंगे ना हम, तो सब आएंगे, परिवार के लोग आएंगे। आजकल लोग पता है क्या होता है, अधिकतर लोग परिवार के लोग कब मिलते हैं पता है आपको? कब मिलते बताओ? मैयत में मिलते हैं, और कोई प्रसंग ही नहीं बचा है अभी। कोई मर गया ना, काका मर गया, काकी मर गई, या तो चाचा मर गया, तो सब लोग आ जाते हैं लटका हुआ चेहरा लेके और चले जाते हैं। दिवाली वगैरह बंद हो गया अभी, ज़्यादा कुछ लोग दिवाली मिलते, लेकिन दिवाली वगैरह भी बंद हो गया अभी। ज़्यादा अपना अपना फेस्टिवल करते हैं, अपना अपना मनाते हैं, प्राइवेट रखते हैं, कोई लड्डू चकली बांटते नहीं है। वो खर्च हो जाएगी तो अपने ही खाएंगे बना के, बस चुपचाप। ये है, मैयत पे मिलते हैं सब लोग, और मैयत में जब मिलते हैं, समझो मैं मर रहा हूँ और आए सब लोग मिलने के लिए, और क्या करेंगे सब लोग पता है? क्या करेंगे? बात करेंगे, क्या हुआ? तो कोई बताएगा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस समय होगा, उस समय वो टीवी देख रहा था, फिर वो चाय पिया, फिर ऐसा हुआ, फिर अचानक गिर गया, फिर डॉक्टर आए, फिर ऐसे गॉसिप करते रहेंगे पूरा। लेकिन मरने वाला आदमी तड़प रहा है, यमदूत को देख रहा है और रो रहा है वो बेचारा, उसकी टट्टी पेशाब हो रही है, और सब लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ। एक आदमी बड़े उत्साह से बोलता रहेगा ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन उस गैदरिंग में वो 4 भक्त लोग आए तो क्या करेंगे? वो तुरंत कीर्तन करेंगे, तुरंत कीर्तन करेंगे, बाकी जानकारी बाद में करेंगे। वो कीर्तन करते ही यमदूत भाग जाएंगे और वो एकदम सा शांत हो जाएगा और भगवान की याद में चला जाएगा। तो हमारा रिश्ता जरूरी क्या है, समझो मेरा मंगल से पट्टी नहीं है, मंगल एकदम बेकार आदमी है। वो बोलता है विश्वरूप दास बहुत खराब आदमी है, एकदम बेकार आदमी, कभी ऐसा आदमी मिलना नहीं चाहिए, इतना हमारा रिश्ता खराब है। लेकिन समझो मैं मर रहा हूँ, मेरा उससे दुश्मनी है मंगल से, और मैं मर रहा हूँ और मंगल वहाँ आ जाता है, तो क्या करेगा? तुरंत हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा। ये हमारी स्ट्रेंथ है, चाहे हमारी दुश्मनी है, बनता नहीं हमारा, पट्टी नहीं, हाँ वाद विवाद है हमारा, लेकिन एक बात सत्य है कि जब हमारा संकट आएगा ना तो भक्ति हमको मदद करेंगे। बाकी कुछ लोग चाहते हुए मदद नहीं कर सकते हमको, ये हमारा अनुभव है। बहुत चाहते हैं लोग कभी कभी, लेकिन चाहते हुए भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि सही मदद क्या उनको पता ही नहीं है। बस आप मरेंगे तो आके रोएंगे आपके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका रोने से क्या लाभ है? रोने से यमदूत थोड़ी रुकते हैं अपने लिए। मौत के समय कहा गया है, जो मरने को आता है ना आदमी, उसके मौत के समय कुछ भी काम नहीं आता है, एक ही चीज काम आती है, आपकी प्रार्थना। और मरने वाला व्यक्ति, शास्त्र में लिखा है कि वो प्रार्थना करने वाले का धन्यवाद करते रहता है, और मरने के बाद जब उसकी आत्मा ऐसी लटकी रहती है और उसे श्राद्ध कर्म क्रिया करते रहते हैं, तो वो श्राद्ध कर्म क्रिया करते वक्त वो देखते रहता है ऊपर से क्या हो रहा है, क्योंकि उसको जाना है ना यहाँ से, अभी पिंडदान करके उसको अगली जगह जाना है, तो वो लटका रहता है। तो उस लटकी अवस्था में वो जो प्रार्थना कर रहा है उसका धन्यवाद करते रहता है वो, क्योंकि वही उसके लिए पोषण है और भोजन है उसका उस समय। आपका पैसा और आप कितने बड़े पंडित को लेकर आ रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका पोषण उसका भोजन एक ही है, आप प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो भोजन कौन देगा आपको? केवल भक्त दे सकता है, उसको जानकारी है उसकी, उसके पास जानकारी के बाद में शक्ति भी है करने की, इच्छा भी है उसको, करुणा भी उसके मन में है। इसलिए ये परिवार जताना बहुत जरूरी है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर यहाँ से बरसाना है, 28 किलोमीटर दूर कुसुम सरोवर है, आप यहाँ बैठे हो, हम लोग उधर 1300 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे हैं, लेकिन हमारा एक परिवार है, भक्ति वेदांत परिवार, जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, एक सिद्धांत पे जुड़े हुए हैं, एक उद्देश्य जुड़े हुए हैं, एक कार्य है हमारे, और सबको एक गुरु जी का, और हमारे कई संप्रदाय, हमारे जो गुरु संप्रदाय है, हमारे कई गुरु जी हैं, वो सब मिलकर इसको चलाते हैं, उनका एक गाइडेंस है, उनके अंदर मतभेद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो हमारे अंदर है, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उनका बढ़िया चल रहा है सब कुछ, प्रेम संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध है उनका, बहुत गहरा और बहुत घनिष्ठ, और देखते ऐसा आनंद आता है उनको देखकर, जैसे वो बैठकर बातें करते हैं ना, हम देखते हैं उनको, इतना आनंद आता है कि हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए गुरु भाइयों के लिए, है ना। तो इसलिए गोलोक वृंदावन क्या है बताइए आप? गोलोक वृंदावन भी एक परिवार है, माँ है वहां पर, पिताजी है, चाचा है, ताई जी है, हाँ जेठानी है, देवरानी है, सब है उधर गोलोक वृंदावन में। पांच भाई है नंद बाबा सब मिलकर, आठ भाई है, नौ भाई ऋषभानु बाबा के हैं सब मिलकर, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं, अष्ट सखियां हैं उनकी बेटियां, और इनके जब चार भाई हैं तो चार भाइयों के दो दो बच्चे हैं, वो अष्ट सखा हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, सब सब बड़ा परिवार है पूरा, बिग फैमिली। और हम सब लोग क्या चाहते हैं कि वो फैमिली को ज्वाइन करें, हमको भी वहाँ जाना है, उनका कोई बनकर रिश्ता बनाकर जाना है। तो वो पारिवारिक भावना जो है वो गोलोक वृंदावन की भावना, ओरिजिनल भावना है, और वो जब हमारे अंदर यहाँ बनेगी तो हम उस परिवार में जोड़ने के लिए योग्य हो जाएंगे। यहाँ पर जो परिवार है उसके हमारी बनती नहीं है, तो वहाँ क्या जाके बनाएंगे? जो सामने है उससे बनती नहीं है, दूर से बनाने वाले हैं, है ना। मतलब कैसा है ना, ऐसे बैठे हुए हम लोग, सब लोग मोबाइल में देख रहे हैं, हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अभी किसी और से बात कर रहा हूँ जो अमेरिका में बैठा हुआ है, और जब मैं अमेरिका जाऊँगा तो आपसे बात करूँगा फिर व्हाट्सएप पे, लेकिन जो अमेरिका में साथ में बैठा हुआ उससे बात नहीं करूँगा मैं, वो सब लोग मोबाइल में देखेंगे, और जो दूर है उससे वो कांटेक्ट करेंगे कुछ स्काइप में या इसमें उसमें, वो व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, अभी मैं रोटी खा रही हूँ, देखो मम्मी ने फोटो दिखाएंगे उसका, तुरंत पराठा बनाया था वो अच्छा था बहुत। तो अगर भगवान ने हमको अभी जो लोग दिए हैं उनके साथ में अपना वैष्णव संबंध अगर अच्छा नहीं हो सकता है, तो भूल जाओ कि हमारा गोलोक जाने की हमारी योग्यता होगी और वहां हमारा संबंध बनेगा और वहां जाके हम लोग तो श्रीदामा को मिलेंगे और फिर उज्जवल को मिलेंगे और सुबल को मिलेंगे और वहां जाके ललिता को मिलेंगे और विशाखा को मिलेंगे, कितना अच्छा रहेगा वहां पर। नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। यहां पर जो आपको दिए गए हैं उनसे आपका प्रेम का संबंध रहेगा तो ही आपको वहां पर एंट्री मिलेगी आगे वालों से मिलने के लिए, वो नहीं मिलेंगे आपसे। तो ये सच्चाई है भाई देवया कि आज आपको जो संघ मिला हुआ है वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेस्ट संघ है, उसी को जताना है आपको, उस पर फॉल्ट नहीं निकालना है। ये प्रभु जी ऐसे हैं, वो प्रभु जी ठीक नहीं है, वो प्रभु जी बराबर नहीं है, ऐसे करते रहेंगे तो यहीं रहेंगे और लोग मिलेंगे फॉल्ट निकालने के लिए, नए नए लोग मिलेंगे, ढूंढते रहो फॉल्ट, अनंत फॉल्ट मिलते रहेंगे, बहुत काम रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर अच्छे पॉइंट ढूंढने लगेंगे तो एक अच्छी परवरिश होगी आपकी, तो लोग आपके अंदर भी अच्छे लोग अच्छी चीज ढूंढेंगे, नहीं तो आपके अंदर भी फॉल्ट ढूंढते रहेंगे, आप भी ढूंढते रहेंगे वो भी ढूंढते रहेंगे और दोनों के लिए बहुत काम रहेगा क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारे मिलेंगे कोई कमी नहीं है प्रभु जी। कलीर दोषे निधिर राजन, बहुत सागर जैसे यहाँ पर आपको काम है दोष ढूंढने के लिए, लेकिन सद्गुण ढूंढने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और सद्गुण भी मिलेंगे बहुत सारे, हर एक के अंदर खचाखच मिलेंगे आपको। उस पर जब अपना दिल लगाएंगे आप तो यहाँ पर प्रेम होगा आपका, और यहाँ पर जब प्रेम की परीक्षा में पास होंगे तो वहाँ के प्रेम के संस्था में एंट्री मिलेगी आपको। यहाँ की जो प्रेम की संस्था है इसमें पास हो जाएंगे तो वहाँ की संस्था में प्रवेश मिलेगा आपको। तो इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन है, इसको गंभीरता से लीजिए आप, इसमें देर से मत आइए। एक घंटा और पौने घंटा पास में रहकर भी फ़ोन करना पड़ता है, आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी होने वाले मीटिंग में भी अगर हमको इम्पोर्टेंस है तो हम लोग पहले आके बैठ जाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, बहुत रेयर है ये, बहुत कम समय होता है उसके लिए, और उसके लिए हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लेट आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा उधर से ही उसका क्या होता है ना, वो गुब्बारा थोड़ा कुछ फुगा रहे, कोई फुगा रहे उसको, कोई हवा दे रहे उसके अंदर, उधर से ही उसका हवा निकल रहे हैं, एकदम ठंडा काम हो जाएगा उसका। तो इसलिए गंभीरता में लेने के लिए क्या करना चाहिए, नंबर वन जो है समय पे आना चाहिए और समय पे आकर उसको उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए उसके अंदर। व्हाट वी से ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, समझो अभी यहाँ पर समझो अभी 10:45 को समझो राधानाथ महाराज आने वाले थे समझो इस मीटिंग में, तो कैसे आप आएंगे भाग भाग के, पहले से आके कब आ रहे क्या, कब कहाँ गए, निकले क्या, नहीं निकले क्या, कहाँ तक पहुँचे, नहीं नहीं वो मीटिंग में बैठे हुए आ रहे हैं बस, सब लोग यहाँ पर बैठ के सब लोग ऑलरेडी रेडी रहेंगे, तो वो हर टाइम उनको आने की जरूरत नहीं, हमको उत्साही बनने के लिए हमको लगना चाहिए कि हम लोग अभी उन लोगों को मिलने वाले हैं जो आमतौर पर नहीं मिल सकते, हमको बिजी रहते हैं। मराठी में कहते हैं उत्सुकता, मतलब एंटिसिपेटरी एंक्शियसनेस एस्ट बी देर, कि एक होती ना उत्सुकता, शादी किसी की होने वाली तो कैसे वेट करते हैं, 25 तारीख को 11 बजे शादी है मेरी, तब से सब वेट कर रहे हैं उसके लिए, कभी होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं, उस तरह की उत्सुकता होनी चाहिए। ईगरनेस इज द प्राइस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्सुकता उत्साह जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए एक कीमत है जो हमको चुकानी है। उत्साह के साथ मिलेंगे, जैसे अब देखो मैं आपको बोलता हूँ उत्साह, बताए प्रभु उत्साह, आज पालिंद्री माता जी का बर्थडे है, पता है आपको, कितने लोगों को पता है, तो पालिंद्री माता जी का आज जन्मदिन है, पासपोर्ट में कल का दिन दिखाए, एक्चुअल जन्मदिन आज का है। 2 दिन पहले पालिंद्री माता जी सुबह 5 बजे उठी, 2 बजे उठी पहले, और 5 बजे बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई, इतना थकी हुई थी वो, और आज भी बिस्तर पे है, बीपी एकदम ऐसा हो गया था कि उनको लगा गई वो, बट लेकिन बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बीपी एकदम लो होके बेहोश होके गिर गए, 15 मिनट तक बेहोश थी, नो रिस्पॉन्स। लेकिन उनको आज अपने जन्म दिवस पे आप लोगों को गाजर का हलवा खिलाना था, बनाया क्या बाद में, नहीं सुनो ना मैं बता रहा हूँ भैया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बनना चाहिए, मैं क्या बता रहा हूँ, उनके मन में ऐसा एकदम तीव्र इच्छा थी ये आज का मीटिंग 1.5 साल के बाद में हो रहा है, मेरा जन्मदिन भी उसी दिन आ रहा है, मैं अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाऊंगी। लेकिन जब बेहोश होकर गिर गई तो इतनी कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई, बोले कैसे बनाऊं अभी मैं। तो जम्बावती माता जी को बुला लिया, लेकिन मैंने कहा मत बनाऊं, मैं आपकी भावना लोगों तो पहुंचा दूंगा, इतना टेंशन मत लो आप आराम करो। नहीं तो वो मैं जब मिलने गया था तो बोल रहे थे कि मुझे हलवा बनाना है, मुझे हलवा बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी, मैं कैसे बनाऊंगी। इसको कहते हैं उत्साह, क्या आपको मुमकिन नहीं है लेकिन आपको करना है। यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर हार्ट, योर फीलिंग्स, और यू वॉन्ट टू सर्व द डिवोटीज। क्या बोलते हैं हमेशा वो, वैष्णव सेवा वैष्णव संघ की जय, वैष्णव सेवा ही सब कुछ है। तो इतने वैष्णव साथ में आ रहे हैं तो उनके मन में तीव्र इच्छा है कि मेरे हाथ से गाजर का हलवा, आसान काम नहीं है, वो घिसना होता है उसको, हाँ फिर वो मावा को करना होता है, फिर चलाना होता है उसको बहुत देर तक, फिर बाद में बनता है, बहुत कट खाने में अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं उसको, गजरी है ना, गजरिया बोलते हैं उसको, गजरीली बोलते हैं उसको, गजरेली बोलते हैं उसको, गाजर के हलवे को। और ये अभी का टाइम का एकदम डेलिकेसी है, वो लोग वेट करते हैं गजरेली को खाने के लिए, दूध का मावा डाल के बनाना था उसको। मैं मतलब इतना मेरा हृदय द्रवित हो गया उस समय। मैंने कहा माता जी मत बनाना, आपकी भावना हम समझ रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है, आपको आराम की जरूरत है, अब मत बनाना उसको। भाव ही सब कुछ है अल्टीमेटली। देखो क्या है ना, बन के नहीं भी आया ना, मैं उस गाजर हलवे को खा चुका हूँ ऑलरेडी, ऑलरेडी मेरे पेट में अंदर पहुंच गया, और जो समाधान मुझे देना था वो दे चुके, वो मिल गया मुझे ऑलरेडी, वो खाने की जरूरत नहीं, कभी खाऊंगा बाद में, लेकिन आज मुझे वो भाव जो है समाधान गजरेली खाने का ऑलरेडी मिल गया हुआ है, 2 दिन पहले ही मिला हुआ है। और अभी एक मैं आपको खुशखबर सुनाता हूँ। राधानाथ महाराज जी ने 25 तारीख की मेरे मीटिंग में पहला प्रश्न पूछा, ये आपने सुना प्रश्न वो पहला, कि भक्तों के रिश्ते कैसे चल रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारा डिस्कशन हो गया, उन्होंने कहा कि मुझे गोवर्धन शिला चाहिए वाड़ा में, हो सके तो लेके आना कोशिश करके, बताया विधि कैसा होता है, एक ब्रिजवासी को देना होता है उसको। तो एक ब्रिजवासी ने, फिर हमने सब कुछ किया उसका सिस्टम से, और एक ब्रिजवासी ने दिया हमको उसको। तो ब्रिजवासी ने दिया तो हमने आके कुसुम सरोवर में रखा उसको, अपने मंदिर में रखा। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि अरे गिरिराज जी हमारे पास आए, जो हमारे गुरुदेव चाहते हैं वो गुरु गिरिराज जी हमारे पास आके पहले विराजमान हो गए। तो अभी वो जब जाएंगे यहाँ से तो एक व्यक्ति भेजना पड़ेगा हमारे यहाँ से, साथ में चाहिए ना भालदार चौबदार, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी गार्ड होते ना, असिस्टेंट होते ना, अरे बड़े आदमी का। तो बोले निताय प्रभु को भेजेंगे हमारी तरफ से। और वो पता है 2 बजे क्यों उठी थी वो, क्योंकि उनको गिरिराज जी को लड्डू शक्करपारा बहुत सारा चीज़ बना के साथ में देना था, कि रास्ता में भोग चाहिए ना उनके लिए। अरे महाराज है भाई, गोराज गिरिधान गिरिराज महाराज है वो, गिरिराज गोवर्धन महाराज है वो, कोई हम और तुम नहीं है जो खाली ब्रेड खा के बैठ जाएंगे, पराठा वो अपना क्या पैटिस और अगस्त क्रांति वाला हम तो वो भी नहीं खाते, लेकिन वो तो गिरिराज महाराज है वो, वह आराम अपने सीट पे बैठेंगे अलग से, साथीदार भी साथ में जाएंगे। 2 बजे क्यों उठी वो, क्योंकि उनको 2 बजे उठकर तुरंत फटाफट काम करके वो लड्डू और शक्करपारा बनाने थे, और वो स्ट्रेस के अंदर गिर गए, बेहोश हो गई वो। लेकिन निश्चय था कि नहीं नहीं अपने यहाँ से गिरिराज जी जा रहे हैं तो उनकी सेवा करना जरूरी है। तो इनको बुला लिया, फिर वो लड्डू और शक्करपारा बना लिया, बिस्तर में लेटकर गाइडेंस किया, ऐसा बनाओ वैसे बनाओ ये कराओ करो। तो कैसा है ना, हम लोग कभी लगता है हम लोग किधर हो, हम लोग किधर है, हम लोग इतना भजन करने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े भक्त हो गए, हम लोग इतने साल सीनियर हो गए हैं, हाँ आगे और भी कुछ पद मिलेंगे हमको आगे आगे, बट नो यूज है उसका। अगर भाव नहीं है तो उसका सब फायदा क्या है उसका, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हाँ तो मैं क्या बोला कि गाजर वाला नहीं भी बनाना, गाजर वाला पहुँच गया तो वैसा भाव होना चाहिए। और आज उनको यहाँ पर आने की इतनी उत्सुकता थी, इतनी उत्सुकता थी, इतने एंग्शियस थे वो, लेकिन नहीं आ पाए, बीमार हो गए। मैंने मना कर दिया, वो आते थे शायद, वो शायद मैंने लेकिन मना कर दिया, 4 दिन आपको यहाँ से उठना नहीं है, एक गोली खाने का सो जाने का बस, 4 दिन के बाद में काम करना आपको, और संभाल रहे काम सब। तो ये तो भाव की बात है, और ये भाव से ही प्रेम बनता है, भाव से ही संबंध बनता है, और भाव से ही आगे बढ़ते हैं। नहीं तो भाव नहीं है, प्रेम नहीं, तो सब बेकार है सब कुछ, अरे तो दुश्मनी और बदले की भावना और हेवा वाद विवाद तो दुनिया करती है, उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें क्या कुछ अचीवमेंट है क्या? क्या विवाद में पीएचडी मिल गया आपको और झगड़े में पीएचडी, इसको ईर्ष्या में पीएचडी मिला, इसमें ईर्ष्या में एमएससी किया, कोई होता है क्या? कोई पूछता है उसको? कोई भी करता है, वो भिखारी भी द्वेष करता है दूसरे भिखारी का। हम लोग क्या बड़ी बात कर रहे हैं? अगर हम भगवान के लिए भाव बना रहे हैं तो कुछ वैल्यू है उसकी, तो कुछ हमारे जिंदगी में कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ अचीवमेंट हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है जिंदगी में। नहीं तो सब लोग है, हम लोग सब लोग है। होता ना मैराथन, मैराथन में क्या होता है ना, 50 किलोमीटर की दौड़ होती है, उसमें हजारों लोग भागते हैं और कुछ लोग चल रहे हैं पीछे से। हम भी थे उसके अंदर, ऑल्सो रैन, बोलते ना ऑल्सो रैन, मतलब कुछ जितने बितने का काम तो बहुत दूर है, लेकिन हम भी थे मैराथन में, चल रहे थे पीछे से, लेकिन कुछ लोग आगे भाग रहे हैं और गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे हैं और कुछ लोग बीच में चल रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, बटर वटा भी खा रहे हैं, बीच में समोसा भी खा रहे हैं और चल रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। तो नहीं, मैं बहुत लंबा मैं भाषण में दे दूंगा, अभी कहने का तात्पर्य एक ही था कि ये प्रेम का भाव रहेगा एक दूसरे के प्रति तो फिर हमारा प्रगति हो सकता है, हमारी संस्था तो प्रगति करेगी, प्रेम की नींव पर आगे बढ़ेगी तो प्रगति करेगी वो। तो इसलिए जो हमारे संस्था में यहाँ काम करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा एक परिवार है, एक परिवार है, और एक परिवार में अलग अलग सेवाएं दी गई हैं। जो घर में भी कैसे पत्नी खाना बनाती है, पत्नी पति काम करता है, अलग अलग घर में भी अलग अलग होती कि नहीं काम। तो ये अपना एक हॉस्पिटल है, इधर डेथ केयर है, उधर भगवान की सेवा है, उधर भक्ति विधान में और कुछ चल रहा है। तो ये भाव जो है ना उसको आप बनाए रखिए, और मेरी प्रार्थना है आपको कि बड़े उत्साह से हर महीने में एक बार आप मिलिए और बड़े उत्साह से आइए, टाइम पे आइए, बैठिए, यहाँ पर बुलाना नहीं पड़ता, पड़ना चाहिए आपको। अगर दूर से आदमी लोग टाइम पे आ सकता तो पास के आदमी क्यों नहीं आ सकते? वो तो 10:30 को ही आ गए थे, उनको तो उसके पहले आधा घंटा निकालना पड़ा होगा, उधर से तैयारी करनी होगी, लेकिन ड्राइविंग व्यूइंग सब करके यहाँ पर 10:30 में हाजिर थे वो, अपना जो लेके आना है वो भी लेके भी आए हैं वो सब लोग, है ना? तो भाव होना चाहिए बस, मैं आपको बार बार विनती करता हूँ। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।